नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने दोडा में एक जनसभा को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम मूल्य हटाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। और चीन के उलुनबियोर में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर्नामेंट के 5वें और अंतिम पूल मैच में आज मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मतदान करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर एक साथ मिलकर बनेगा। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश के भाग्य का निर्णय करने जा रहा है। श्री मोदी ने मतदाताओं से कहा कि जिन राजनीतिक दलों पर उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने उनके बच्चों की उपेक्षा की और केवल अपने परिवारों के हितों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा आतंकवाद से पीड़ित हैं और पार्टियां लोगों को गुमराह करके परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा सरकार ने युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों का उद्घाटन किया है। श्री मोदी ने कहा कि डोडा में एक मेडिकल कॉलेज के काफी समय से लंबित मांग को भी हाल ही में भाजपा सरकार ने ही पूरा किया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए 24 विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज कुरुक्षेत्र से भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने हिंदी भाषा के महत्व के बारे में एक वीडियो साझा किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि राजभाषा विभाग शीघ्र हिंदी से 8 अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ करेगा। इससे पत्रों और भाषणों का बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी भाषाओं में अनुवाद हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी को देश और विदेश में राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के महत्व पर वीडियो साझा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हिंदी और अन्य भाषाओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। नई दिल्ली में आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह और 4वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात पर न्यूनतम मूल्य पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। वर्तमान व्यावसायिक चिंताओं और चावल के पर्याप्त घरेलू उपलब्धताओं का आकलन करने के बाद ये कदम उठाया गया है। चावल की बढ़ती कीमतों तथा घरेलू बाजारों में आपूर्ति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगस्त 2023 में एक अस्थायी उपाय के रूप में $1200 प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम मूल्य तय किया गया था। बाद में अक्टूबर 2023 में न्यूनतम कीमत को $950 प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि सरकार उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए थोक बिक्री की रणनीति अपना रही है। सरकार बढ़ती मांग, आपूर्ति परिस्थितियों और कीमतों के रुझानों के आधार पर प्याज की लक्षित और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इस महीने की 5 तारीख को मोबाइल वैन पर 35 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू की गई थी। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई थोक बिक्री पहले से ही शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसे हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता सहित सभी राज्यों की राजधानियों तक बढ़ाया जाएगा। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि भारत खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य आधारित सुरक्षा कार्यक्रम लागू कर रहा है। ब्राजील के कुयाबा में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में आज श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कृषि विकास को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण न केवल उत्पादकता पर केंद्रित है बल्कि आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थिरता, किसानों के समृद्धि को बढ़ाने और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना भी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने मानवीय क्लिनिकल क्षेत्र के पहले परीक्षण में प्रगति के लिए फार्मा कंपनियों और शिक्षाविद भागीदारों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता क्लिनिकल परीक्षण में आत्मनिर्भरता हासिल करने और स्वदेशी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस भागीदारी सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता सभी नागरिकों के लिए सस्ते और सुलभ इलाज की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस पहल से भारत को विश्व स्तर पर स्वास्थ्य नवाचार में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज सुबह उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में क्रीरी मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। क्रीरी इलाके के एक गांव चक ए टेपर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों को मार गिराया गया। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। राजनीतिक दलों के कई नेता आज नई दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्री येचुरी का बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि देने के लिए नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय AK गोपालन भवन में रखा गया है। कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार, DMK सांसद कनिमोई, कांग्रेस नेता जयराम रमेश तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया कल गुजरात के राजकोट में पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3री क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में श्रम सुधारों, ई श्रम, असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ ही केंद्र सरकार तथा राज्यों द्वारा की जा रही प्रमुख पहलों पर सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये बैठक श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चल रही राष्ट्रव्यापी परामर्श की श्रृंखला का एक हिस्सा है। बैठक में असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल की स्थापना, भवन और निर्माण श्रमिकों की विभिन्न केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। चीन के उलन बियोर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के 5वें और अंतिम पुल मैच में आज मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए जबकि पाकिस्तान की ओर से नदीम अहमद ने एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत दर्ज की। दूसरी ओर पाकिस्तान ने पहला मुकाबला गंवाया है। 4 बार का चैंपियन भारत इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुका है। भारतीय टीम अब तक अजेय रही है। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें राउंड रोबिन प्रारूप में खेल रही है और शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी। सेमीफाइनल मैच सोमवार को खेले जाएंगे जबकि फाइनल मैच मंगलवार को होगा। हंगरी में 45वें फिडे शतरंज ओलंपियड में भारतीय महिला टीम ने कल स्विट्जरलैंड को 3-1 से मात दी। आर वैशाली, दिव्या देशमुख और वंटिका अग्रवाल ने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। हालांकि दी हरिका को पूर्व विश्व महिला चैंपियन एलेक्जेंड्रा कोस्टेनियोका से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत से भारतीय टीम को 6 अंकों की संयुक्त बढ़त मिलेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कल वाशिंगटन में अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अगले संभावित कार्रवाई और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।